समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर एक नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों के मैदान की हलचल भी होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे इस अंक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं रेणु कटारिया। नमस्कार रेणु।
नमस्कार। हेलो अलका एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड डियर लिसनर्स, एज अलका हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू हैव इन आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, बट स्टिल वी आर गोइंग टू शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, Metro City updates, as well as we are going to share some historical information related to this day, that is the 25th of August. तो अलका, हम हेडलाइंस से शुरुआत करें।
बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनु राबुका के साथ वार्ता करेंगे। श्री राबुका 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। शिक्षा और पूर्वोत्तर राज्य विकास राज्य मंत्री सुकांता मजुमदार ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। श्री राबुका के साथ उनकी पत्नी सुलेती राबुका भी भारत आई हैं। फिजी से आए शिष्टमंडल में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मंत्री रातु अतोनियो लला बलाबू और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कल शाम श्री राबुका से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि प्रधानमंत्री राबुका कि यह पहली भारत यात्रा है। इस दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। इस यात्रा से भारत और फिजी के संबंध और सुदृढ़ होंगे। दोनों देशों ने सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
Prime Minister Narendra Modi will be on a two-day visit to Gujarat beginning today. During the visit, Mr. Modi will inaugurate and lay the foundation stone of development projects worth over 5,400 crore rupees at Kodaldham ground in Ahmedabad this evening. Prime Minister will also address a public function on the occasion. The projects to be launched today are related to urban development, energy, roads and railways. On the second day of his visit tomorrow, Mr. Modi will inaugurate localized production of hybrid battery electrodes and flag off battery electric vehicle exports to 100 countries at Hansalpur in Ahmedabad. We have a report from our correspondent.
In line with government's vision for world-class infrastructure and connectivity, the Prime Minister will dedicate multiple railway projects worth over 1400 crore to the nation. These include the doubling of 65-kilometer Mehsana-Palanpur railway line, gauge conversion of Kalol-Kadi-Katosan road and Bechraji-Ranoch railway lines, enhancing broad gauge capacity for safer and smoother connectivity in North Gujarat region. In addition, the Prime Minister will inaugurate the widening of Viramgam-Khudat-Rampura road and lay the foundation stone for 6-lane underpass on Ahmedabad Mehsana Palanpur route. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए हर उपाय करेगा और जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा खरीद जारी रखेगा। रूस की समाचार एजेंसी को साक्षात्कार में श्री विनय कुमार ने कहा कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारत से आयात पर 25% शुल्क बढ़ाकर कुल 50% करने का अमरीका का निर्णय पूरी तरह अनुचित और असंगत है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति का उद्देश्य अपने नागरिकों के लिए विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना है तथा रूस और अन्य देशों के साथ उसके सहयोग ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिरता में योगदान दिया है। श्री विनय कुमार ने कहा कि भारत और रूस का व्यापार परस्पर हितों और बाजार कारकों से संचालित है। उन्होंने कहा कि अमरीका और यूरोपीय देशों सहित अन्य देश भी रूस के साथ व्यापार करते हैं।
Sports Minister Mansukh Mandaviya has said that India aspires to be among the top 5 sporting nation in the world by 2047, the centenary of the country's independence. Addressing the opening ceremony of the Commonwealth Weightlifting Championships at Ahmedabad, Mr. Mandviya said, under Prime Minister Narendra Modi's leadership, India has progressed by leaps and bounds in the sporting sector and many reforms have been introduced in the area. He said the Prime Minister has kept a goal to take the country among top 10 in the world in the next 10 years. The minister said the need of the hour is to create a sporting ecosystem in the country and the government is dedicated to creating that. Mr. Mandviya said, in the last parliament session, the government introduced the Sports Governance Bill, which is an athletic-centric bill. The bill gives importance to women's representation in national sports federations.
सरकार ने इन अफवाहों का खंडन किया है कि ट्रेन टिकट बंद कर दिए गए हैं और अब यात्रियों को टिकट नहीं मिलेगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि रेल मंत्रालय ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही कोई भी अफवाह झूठी है। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा कि ट्रेन टिकट रेलवे स्टेशनों और आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने लोगों से कहा कि ऐसी खबरों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें।
India's Sharvari Somnath Shende won the under-18 women's individual recurve gold medal at the 2025 World Youth Archery Championships in Winnipeg, Canada yesterday. The 16-year-old defeated South Korea's Kim Yi-won 6-5 in a tense final. Shende led 4-1 in after the first three sets, but Kim came back strong to tie the match and force a shoot-off in the deciding shot. Kim scored 9 while Shende hit a perfect 10 to clinch the gold. Shende is the second Indian woman to win gold at the ongoing tournament. Earlier on Saturday, Chikita Taniparthi won the under-21 women's compound individual. She defeated Korea's Yerin Park by 142-136 in the compound under-21 women's gold medal match.
न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में अब समय है 6 महानगरों के प्रमुख समाचारों का। पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से जुड़े समाचारों के साथ हैं रेनू।
Thank you, Alka. I'll begin with Chennai Metro. The Officers Training Academy, Nanganallur Metro Station, will have a second entrance this year. The additional structure for the entry and exit for commuters on the Officers Training Academy side will be constructed with 3 floors measuring 364 square meter. When the work gets completed, commuters can enter the station from the OTA side and the structure will have lifts and escalators to reach the concourse and the station. And there is one more news, Alka, that I have from Chennai. The Greater Chennai Corporation will revamp gender club activities in its schools through a 4-day orientation for teachers and headmasters. The gender clubs, first introduced 3 years ago by the Gender and Policy Lab in collaboration with GCC, were initially aimed at sensitizing class 9 and 10 students on equity and inclusivity. The initiative is now being extended to class 8 students with plans to take it further down to lower grades, and currently 130 middle schools and 81 high and higher secondary schools under GCC run gender clubs. The idea was to institutionalize discussions on gender equality. Moving on to Bengaluru, the world-famous Mysore Dasara will be inaugurated by Banu Mushtaq, the Booker Prize winner atop Chamundi Hill on September 22nd. As is the custom, Banu Mushtaq will inaugurate Dasara Festival by offering puja at the Chamundi Temple. The 11-day festivities will conclude with culturally vibrant Jumbo Sawari procession on the Vijayadashmi Day and will see a spectacular flight display by the Indian Air Force. During the Jumbo Sawari procession, Goddess Chamundeshwari is placed on a golden howdha on the back of a decorated elephant and taken on a procession accompanied by tableau, folk artist, music bands, decorated elephants, horses and police marching contingent. The 5 kilometers long procession starts from Mysore Palace and culminates at Bunny Mantap, where the bunny tree is worshipped. Banu Mushtaq won a Booker Prize this year for her Kannada work, and she's associated with farmers' organizations and progressive movements.
और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने मेट्रो किराए में वृद्धि की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने कहा कि ये बढ़ोतरी मामूली होगी और यात्रा दूरी के आधार पर 1 रूपये से 4 रूपये तक किराया बढ़ाया जाएगा। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए 5 रूपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। किराया वृद्धि आज से ही लागू हो गई है। दिल्ली सरकार के सहकारिता मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य से प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित है। सैनिकों के सम्मान में दिल्ली की सहकारी संस्थाएं रक्त बैंक की स्थापना करेंगी। उन्होंने कहा कि इससे आपात स्थिति में दिल्ली वासियों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के निवासियों को भी लाभ होगा। सहकारिता मंत्री ने कल ये बात अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग स्थित रामलीला कमेटियों द्वारा आयोजित भूमि पूजन में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने हमें सिखाया है कि असत्य, अन्याय और आसुरी शक्तियों से निपटकर ही राम राज्य की स्थापना होती है। वहीं राजधानी में रामलीला और दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा और दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह कल लाल किला परेड मैदान में आयोजित होने वाली नवश्री धार्मिक लीला कमेटी के भूमि पूजन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वस्तु और सेवा कर जीएसटी में और सुधार करने के निर्णय का कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने स्वागत किया है। कैट ने इस पहल को जीएसटी को वास्तविक अर्थों में उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। और रेणु राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण में कल रविवार को छुट्टी वाले दिन बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और इस वर्ष उद्यान में पर्यटकों के बीच बाल वाटिका और बोनसाई गार्डन आकर्षण का केंद्र था और विभिन्न प्रकार के 80 से अधिक प्रजातियों के फूल भी आगंतुकों को खूब पसंद आए। और बात कर लें मुंबई की, तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के सतनावरी गांव को आधिकारिक रूप से भारत का पहला स्मार्ट और इंटेलिजेंट विलेज घोषित किया गया है।
दैट्स वेरी नाइस।
बिल्कुल। और इस पहल का औपचारिक शुभारंभ कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पहले चरण में समूचे महाराष्ट्र के लगभग 3,500 गांवों को स्मार्ट और इंटेलिजेंट गांव में बदला जाएगा। राज्य के प्रत्येक तालुका में शीघ्र ही कम से कम 10 ऐसे गांव होंगे। और रेणु, जब गांव की बात होती है तो निश्चित वहां का जो हरियाली और ये सारी चीजें हैं वो आकर्षित तो करती ही हैं, लेकिन अगर हर तरीके से वहां भी विकसित हो, विकास हो, तो गांव निश्चित रूप से स्वर्ग तो पहले ही है, वो और सुंदर जगह
और सुंदर हो जाता है।
बिल्कुल,
यस।
और पिछले सप्ताह राज्यभर में हुई भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के बांधों में जल संग्रहण 82% तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 12% की वृद्धि दर्शाता है। नागपुर, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, पुणे और कोंकण संभागों में जलाशयों में औसत से अधिक जल स्तर दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि मराठवाड़ा, जो अक्सर सूखे की मार झेलता रहता है, में भी इस साल 75% जल संग्रहण दर्ज किया गया है, जिससे किसानों और निवासियों को राहत मिली है। वहीं बृहन नगर निगम मुंबई बीएमसी ने इस वर्ष गणेशोत्सव के लिए पर्यावरण के अनुकूल उत्सवों पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक तैयारियां की हैं। सुरक्षित मूर्ति विसर्जन सुनिश्चित करने के लिए नागरिक निकाय ने शहर भर में 275 से अधिक कृत्रिम तालाब बनवाए हैं और इसके अतिरिक्त बीएमसी ने 500 से अधिक मूर्तिकारों को 990 टन निःशुल्क साधु मिट्टी वितरित की है और 1022 मूर्तिकारों को अपनी कार्यशालाएं स्थापित करने के लिए निःशुल्क स्थान प्रदान किया है।
जी।
बात कर लें कोलकाता की, तो कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण ने शहर के फ्लाईओवरों और पुलों के नीचे बने अनाधिकृत विक्रेताओं और घरों को हटाने की पहल की है। प्राधिकरण द्वारा 4 पुलों को पहले ही साफ कर दिया गया है और स्थायी ग्रिल लगा दी गई है। ये पहल पिछले दिसंबर में कोलकाता के न्यू अलीपुर इलाके में दुर्गापुर पुल के नीचे आग लगने की घटना के बाद की गई है, जिसमें पुल का कंक्रीट क्षतिग्रस्त हो गया था।
अब Alka, I have one last metro news that is from Hyderabad.
Bilkul.
And let me finish that
bilkul.
We go on to our next segment.
Bilkul.
So, Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy has asked researchers and entrepreneurs from the state to innovate for the world as it becomes an uncertain place with tariffs, cost and trade barriers. Speaking at the Biodesign Innovation Summit 2025 organized by AI and MedTech Foundation in Hyderabad, he unveiled the vision document, Innovations for Bharat, the Biodesign Blueprint. He said the time has come to use intelligence for helping the country, as the best minds of the country have been solving problems for other countries. The Chief Minister reiterated the vision of Telangana rising and the aspiration of becoming the $3 trillion economy by 2047 when India turns to 100.
आज सवेरे में आप सुन रहे हैं अलका और रेणु के साथ, और अब समय है मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले बात कर लें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। दिल्ली में आज सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा होने की संभावना है, लेकिन रेणु बारिश जो है वो सुबह से ही हो रही है और अच्छी खासी हो रही है, लगभग पूरे दिल्ली में हो रही है। और आज का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आज सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और जॉय सिटी कोलकाता की बात करें तो आज सामान्यतः बादल छाए रहेंगे, एक या दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
एंड द अदर थ्री मेट्रोज आर आल्सो गोइंग टू सी पार्टली क्लाउडी स्काई ड्यूरिंग द डे टुडे। सो बिगनिंग विद चेन्नई, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 27 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 21 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी around 29 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
बिल्कुल, और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 25 अगस्त है
जी, और अगर हम शुरू करें तो लेट्स बिगिन विद द ईयर 1916।
बिल्कुल, 1916 की बात करें तो टोटनबर्ग के युद्ध में रूस ने जर्मनी को पराजित किया था।
In 1917, the first significant step towards the Indianization of the army was initiated when 7 selected Indians serving in the army were granted King's Commission in the infantry and the cavalry. Before the World War ended, 2 more Indians who previously held temporary commissions were granted King's Commission on this day, that is the 25th of August. And on the same day in 1948, Jana Gana Mana was to be the provisional national anthem till Constituent Assembly made a final decision.
बिल्कुल, और 1957 की बात करें तो भारतीय खेल जगत में 25 अगस्त बेहद खास रहा है। इसी दिन भारत ने साल 1957 और 1975 में पोलो वर्ल्ड कप जीता था, और ठीक एक ही तिथि पर दो बार ये कारनामा दोहराकर भारत ने इस खेल में अपना दबदबा साबित किया था। आधुनिक पोलो का जन्म स्थान जो है वो मणिपुर
माना जा
रहा है। बिल्कुल, जहां खेल को सागोल, कांगजेई, कंजाई बाजी और पुलू के नाम से जाना जाता है। और अगर हम 1957 की बात करें तो विश्व कप पोलो विजय महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय सहित भारतीय पोलो टीम विश्व कप पोलो में विजयी हुई थी, जिसे जयपुर को नई उपलब्धियां प्राप्त हुई थी
जी। इफ वी गो ऑन टू द ईयर 1960, ऑन दिस डे ओलंपिक्स ओपन्ड एट रोम, एंड इन 1965 ऑन 25th ऑफ ऑगस्ट इंडियन ट्रूप्स क्रॉस द कश्मीर सीजफायर लाइन परसुइंग पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स।
और 1959 की बात करें तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में घोषणा की कि यदि चीन द्वारा आक्रमण किया गया तो भारत भूटान और सिक्किम की रक्षा करेगा।
In the year 1975, Bundelkhand University was established in Uttar Pradesh on this day.
और 1990 की बात करें तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन की घोषणा की थी। और 1991 में बेलारूस सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र देश बना, और 1992 में MI4 को शक्तिशाली MI35 स्क्वाड्रन के साथ पुनः सुसज्जित किया गया और इसका नाम बदलकर 104 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कर दिया गया।
On this day, that is the 25th of August in the year 1997, Konkan railway line in Goa, except for a short stretch between Pernem and Maharashtra border, became operational. And in 1998, resurgent India bonds garnered more than $4 billion, of which 30% were from the Middle East, 20% from Southeast Asia, US and or Europe on this day, that is the 25th of August.
बिल्कुल। और अब जयंती, पुण्यतिथि और जन्मदिन की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं असित सेन को, और आज इनकी पुण्यतिथि है। और फिल्म निर्देशक, छायाकार, विचित्र, फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक असित सेन जो है, उन्होंने बांग्ला और हिंदी दोनों सिनेमा में काम किया।
कि जैसे मंदिर में लौ दिए कि
तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़े हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लौ दिए।
उन्होंने हिंदी और बांग्ला में 17 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया और उन्हें बांग्ला में दीप जले जाए और उत्तर फाल्गुनी, हिंदी में ममता, खामोशी, अनोखी रात और सफर फिल्मों के लिए जाना जाता है। 4 दशकों से अधिक के करियर के साथ अपने समय में एक प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में याद किए जाने वाले, विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्में बनाते हुए असित सेन का भारतीय सिनेमा में योगदान उस युग के अन्य दिग्गजों के साथ विशेष उल्लेखनीय है। और रेनू, अधिकतर लोग जो है वो इन्हें अभिनेता असित सेन समझने की भूल कर बैठते हैं।
मैं भी शायद उनमें से हूँ, क्योंकि मुझे लगा आप कॉमेडियन असित सेन की बात
नहीं, मैं डायरेक्टर असित सेन की बात कर रही थी। सेन को 2 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और 1 बार इन्होंने इसे जीता।
मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं, फिर रूप का रस पीने के लिए।
और 1967 में उन्हें ममता के निर्देशन के लिए नामांकित किया गया और 1971 में सफर के लिए पुरस्कार मिला, जिसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और फिरोज खान ने अभिनय किया था। और असित सेन का 25 अगस्त 2001 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, लेकिन उनकी फिल्में और उनके जो गाने हैं वो आज भी जब बजते हैं तो मन को अजीब सा सुकून मिलता है।
क्या कोई लिखे तुझ पे कविता। रंगों छंदों में समाएगी किस तरह से इतनी सुंदरता।
Such beautiful movies and such beautiful songs, Alka. Thank you, हमारे को ये गाने सुनाने के लिए। So today we are paying tributes to Sir Thomas Sean Connery, who was a Scottish actor. He was the first actor to portray the fictional British secret agent James Bond in motion pictures, starring in 7 Bond films between 1962 and 1983. Connery originated the role in Dr. No in the year 1962 and continued starring as Bond. And अगर हम उनकी मूवीज की बात करें तो फ्रॉम रशिया विद लव, गोल्डफिंगर, थंडरबॉल, यू ओनली लिव ट्वाइस एंड डायमंड्स आर फॉर एवर। और अगर हम उनके फाइनल अपीयरेंस की बात करें, सो दैट वाज इन द मूवी नेवर से नेवर अगेन। बट हियर वी आर गोइंग टू लिसन टू द आइकॉनिक लाइन फ्रॉम द मूवी डॉक्टर नो, जो कि शॉन कॉनरी ने बोला था, जिससे कि वो बहुत ही हिट हुए थे और हम सबको पता चला था कि जेम्स बॉन्ड कैसे बोला जाता है।
Admire your courage, Miss
Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr.
Bond. James Bond.
और रेणु, आज ही जन्मदिन है नित्याश्री महादेवन का, कर्नाटक संगीत और तमिल पार्श्व गायिका, और इनका जन्म 25 अगस्त 1973 को तमिलनाडु में हुआ था। नित्याश्री का पार्श्व गायिकी के रूप में करियर जो है वो 1998 में शुरू हुआ था, और एआर रहमान ने उन्हें फिल्म जीन्स के लिए कन्नाडु रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया। ये गाना तुरंत लोकप्रिय हो गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। बिल्कुल, और उन्होंने कन्नड़, तेलुगु और मलयालम सहित अनेक अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों के लिए भी गाने रिकॉर्ड किए।
जी बिल्कुल। So today is the birth anniversary of Leonard Bernstein, who was an American conductor, composer, pianist, music educator, author, and humanitarian, and considered to be one of the most important conductors of his time. He was the first American-born conductor to receive international acclaim. Bernstein's honors and accolades include 7 Emmy Awards, 2 Tony Awards, and 16 Grammy Awards, including the Lifetime Achievement Award. पर हम ज्यादा कुछ इनके बारे में नहीं बोलेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स इनकी सिम्फनी सुने, द लंडन, जो कि ये लीड कर रहे हैं द लंडन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा इन द कंक्लूजन ऑफ माला सेकंड विद सोप्रानो शीला आर्मस्ट्रॉन्ग।
और आज बड़ी बड़ी आंखों वाली चुलबुली शोक अभिनेत्री और पार्श्व गायिका विजेता पंडित का जन्मदिन है, जिनकी 1981 में आई फिल्म, जो पहली फिल्म थी लव स्टोरी, ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।
देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, आ जा।
विजेता कुछ साल बाद फिल्म मोहब्बत में आई, और उसके बाद इन्होंने जो फिल्में निभाई उसमें दीवाना, तेरे नाम का, जल जला, प्यार का तूफान, ये सब शामिल हैं।
Today we are also paying tributes to Michael Faraday, who was an English chemist and physicist who contributed to the study of electrochemistry and electromagnetism. His main discoveries include the principles underlying electromagnetic induction, diamagnetism, and electrolysis. Although Faraday received little formal education as a self-made man, he was one of the most influential scientists in history. It was by his research the magnetic field around a conductor carrying a direct current that Faraday established the concept of the electromagnetic field in physics, and the SI unit of capacitance Alka, the farad, is named after him. और आज हम टिमोथी वॉल्टर बर्टन को भी विश कर रहे हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे। वाज एन अमेरिकन फिल्म मेकर, आर्टिस्ट एंड प्रोड्यूसर, और इनकी मूवीज के बारे में बात करें तो बैटमैन जैसी मूवीज इन्होंने बनाई है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सर्प्ट हम सुन लेते हैं फ्रॉम द मूवी बैटमैन, वेयर ब्रूस वेन इज टॉकिंग विद द जोकर।
दिस मी, नाइस प्लेस यू गॉट हियर, लॉट्स ऑफ स्पेस। Vicky, we really should have a talk. Very upset. We were having dinner. I was a man doing well with a beautiful woman. And without so much as an apology, you ran off.
आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के अभिनेता राजीव कपूर को। आज उनकी जयंती है, और वो अपने समय के ख्याति प्राप्त फिल्म अभिनेता राज कपूर के सुपुत्र थे, ये तो सब जानते हैं। और हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था इन्होंने, फिल्म जो थी वो एक जान है हम, और उनकी पहचान उन्हें मिली 1985 में आई राम तेरी गंगा मैली फिल्म से।
जी,
मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन
बिल्कुल। और रेणु घरी की सुइयां कह रही हैं कि श्रोताओं से हम अनुमति लें, तो रेणु कटारिया और अलका सिंह को अनुमति दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी।
यस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।